ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। 19 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸਟੀਮ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ brampton.ch/register-for-programs ਤੇ ਜਾਓ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡ 1, 3, 4, 5 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2025 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/rrl ਤੇ ਜਾਓ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੈਲਗਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਖਰੇ ਪੌਦੇ, ਮਿੱਟੀ, ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਗਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਕੈਲਗਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 9058409000, 905-840-9000। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। 19 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸਟੀਮ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ brampton.ch/register-for-programs ਤੇ ਜਾਓ।
ਇਨ ਸਭ ਕਾਮੋ ਕੇ ਲਿਏ ਤੋ ਮੁਝੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ।
ਕੌਨ ਸੇ ਕਾਮ?
ਵਹੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਰ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵਲਰੀ ਕਾ ਖਾਸ ਕਾਮ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਆ।
ਬਸ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ, ਪਾਇਲ ਜਿਵਲਰਸ ਪੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਕੀ ਜਿਵਲਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਨ ਸਭ ਮੇਂ ਹੀ, ਦੁਬਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੀ ਤਮਾਮ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਵਲਰੀ।
ਮੁਝੇ ਉਨਕਾ ਐਡਰੈਸ ਬਤਾਓ, ਮੈਂ ਆਜ ਹੀ ਇਹ ਕਾਮ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਤੀ ਹੂੰ।
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਇਲ ਜਿਵਲਰਸ ਕਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2720 ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ, ਯੂਨਿਟ 42, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਪਾਇਲ ਜਿਵਲਰਸ ਕੇ ਅਸਲਮ ਭਾਈ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਐਟ 9057907879, ਦੈਟ ਇਜ਼ 9057907879.
Spear and McKay Menswear, fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compare kar sakte hain aap Harry Rosen, Burberry or Hugo Boss se. 100% Italian wool suits from $249.99, 100% Egyptian cotton shirts from $29.99, 100% Italian wool trousers from $49.99. We have moved to a new location in Heartland Town Center, 775 Britannia Road West, Unit 7B, Mississauga pe. Hum Sundays ko bhi open hain. Zyada information ke liye call kijiye at 905-670-3388 ya visit kijiye hamari website spearandmckay.com.
विलेज टेस्ट पूरे ओंटारियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वेराइटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे फा मुजफ्फर आपके साथ बात कर रहे हैं। टेम्परेचर आज ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आज महसूस करते हैं। 30 मई का दिन है और अगर इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से देखें तो 4 जुलहज है। यस 4 और 31 और 6 तारीख को हमारी ईद होगी। 4 ही बना नहीं, मैं वैसे जो चांद देखा था उसके लिहाज से तो आई डोंट नो। एनीवेज प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदेद कहना चाहती हूँ। आज के प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो का नंबर आप नोट कर लीजिएगा 416-620-1778। वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर कॉल एंड ऑफ कोर्स वी वुड लव टू हैव यू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ 770। साजो आवाज पे आपकी मौजूदगी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। 416-620-1778 इट्स अ वॉइस ऑफ कम्युनिटी, सो आपकी आवाज भी सारे सुन लें तो बहुत अच्छी बात है। हमारी वेबसाइट www.eawaz.com हमारी वेबसाइट है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी वेबसाइट पे आप जरूर तशरीफ लाएं एंड यू कैन डेफिनेटली सी ऑल काइंड ऑफ न्यूज देयर, अंग्रेजी में, उर्दू में, पश्तो में, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको पढ़िएगा और हमें फीडबैक दें। लेकिन न्यूज बहुत जरूरी भी है और आप दुनिया के साथ वाबस्ता रहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। हमारी वेबसाइट एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा www.eawaz.com हमारी वेबसाइट है। वेदर के लिहाज से अगर आपसे बात करूं, आज शाम में बारिश के चांसेस भी हैं। कल का वेदर निस्बतन थोड़ा सा बेहतर होगा। इस वक्त टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई महसूस किया जा रहा है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड आज का टेम्परेचर है और अगेन मैं आपको लेकर के जाना चाह रही थी अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, होम पेज है वॉच लाइव, आप टेलीविजन देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पूरी की पूरी टीम से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। अगर आपने कोई आर्काइव्स पे प्रोग्राम सुनने हैं, तमाम प्रोग्राम्स आप आर्काइव पे सुन सकते हैं। गिव अस अ चांस टू एडवर्टाइज योर बिजनेस, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 7 डेज अ वीक आपके बिजनेस की प्रमोशन और बेहतर तौर पर आपके पैगाम की तरसील हमारी जिम्मेदारी होगी। आज के प्रोग्राम में ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया ने हज, बहुत गर्मी का हज है और अगले 3-4 महीने तो और भी ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन हर साल अगर इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से देखें तो 10 दिन का डिफरेंस आया करता होता है, जिसकी वजह से ये हमारे रमजान और हज के दिन हैं। साल अराउंड द ईयर 10 डेज पीछे की तरफ आते जाते हैं। हमने अपनी जिंदगी में एक रोजे गर्मियों के रखे, शुक्र है इट वाज द टाइम जब हम बहुत यंग थे। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो यकीनन उनको भी जवानी में ही गर्मी के रोजे मिलेंगे, मगर चंद लोग हैं जिनको ओल्ड एज में, जाहिर है उसमें फिर लंबे रोजे जब आते हैं तो मुश्किल हो जाया करता है, तकरीबन 10-11 घंटे का रोजा हो जाया करता है। तो इस दफा हज पे बहुत गर्मी होगी, शदीद गर्मी होगी। सऊदी अरेबिया ने इसके लिए खास तौर पे एहतमाम किया है, उन्होंने तकरीबन ज्यादा स्टाफ मेंबर्स किए हैं, 400 से ज्यादा कूलिंग सेंटर्स भी उन्होंने अरेंज किए हैं, यानी जहां पे वो फवार होती है, पानी होता है, पंखे लगे हुए होते हैं, तो हुज्जाज कराम फॉर द टाइम बींग आके, लास्ट ईयर भी गर्मी की वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी और हज के मौके के ऊपर घूमना एक आम सी बात है। एक और चीज जो हम आपको पाकिस्तान की तरफ अगर लेके जाएं और जिसमें पाकिस्तान का अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान की एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। आपको पता ही है कि जनाब हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, सेनेटर भी रहे हैं और उसके बाद अब जाहिर नहीं है। इन्होंने डॉक्टर आफिया सदीकी के हवाले से सेनेटर मुश्ताक जो है इन्होंने दो बार अमेरिका आके मुलाकात भी की थी। अभी रिसेंटली अपनी सेनेटरशिप के लास्ट डेज में भी इन्होंने आके मुलाकात की थी, मगर इसराइल हमास के अटैक के बाद फिर इसराइल में गजा में जो डेथ्स हुई थी उसके हवाले से इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। आपको याद होगा कि इनकी बेगम भी उनके साथ थी, उनको भी जदोकोब किया गया था, गोली भी चलाई गई थी उनके ऊपर। बल्कि अगर आपको याद हो कि उस वक्त के जो हमारे एक आर्मी के आईएसआई के जो इंचार्ज थे उनके एक बेटे, वो भी खैर अब बाहर चले गए हैं, उनके बेटे ने भी अर्ली रिटायरमेंट ले ली, तो उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने इन पे गाड़ी भी चढ़ाई थी। ये बड़ी आम खबर थी। अभी रिसेंटली जनाब सेनेटर एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो हैं उन्होंने गजा में जो फलस्तीनी है उनके हवाले से एहतजाज किया और बड़ा पुरअमन एहतजाज था। पुलिस ने दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर मुजाहरीन को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले इनकी वाइफ हालांकि शी वॉज इन द बुरका, उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया था। नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद के बाहर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उन्होंने उनके अलावा और भी खवातीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुजाहरीन को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है और ये बल्कि हामिद मीर साहब ने इसको एक्स के ऊपर पोस्ट भी किया है। हामिद मीर साहब की ने समाजी रबते की वेबसाइट एक्स पर सवाल उठाया कि इस्लामाबाद इंतजामिया इस गिरफ्तारी की वजूहत बताए, क्या पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में मुजाहरा करना कोई गलत बात है? मगर मुझे और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि दीवार के पीछे क्या है, कौन कौन से ममालिक कैसे चल रहे हैं, हम आप तालियां बजाने वालों में से शामिल हैं। कभी आप भी अपने यूनिवर्सिटी को, अब तो खैर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, अगर वो लोग जो मेरे ग्रुप से हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती होती थी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी, जमात इस्लामी के बहुत से लीडर्स आप भी आपको नजर आते हैं उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा थी। उस जमाने में मुझे याद है कि बहुत से बच्चे जो पढ़ने वाले हुआ करते थे या अपने काम से काम रखने वाले होते थे, मगर ये जलसे जुलूस जब हुआ करते थे शामिल होते थे, मगर जो ऊपर के लीडर्स होते थे उनको इत्तला होती थी कि पुलिस ने कब आना है और छापा कब पड़ना है, तो वो ऊपर से ऊपर ही भाग जाया करते होते थे। बेचारे जो पड़ाकू किस्म के स्टूडेंट, जो लाई लग किस्म के स्टूडेंट्स होते थे, वो पकड़े जाया करते होते थे। अब वो कहते हैं कि पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक और उनकी अहलिया समेत 10 से ज्यादा मुजाहरीन को प्रेस क्लब के बाहर गिरफ्तार किया था, जबकि बाद में बच्चों और खवातीन समेत मजीद दर्जन भर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों की जब हम बात करें, जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने जो बाहर की उनकी डीलिंग्स हैं या जो डिप्लोमेटिक डीलिंग्स उनकी हैं, उनके लिहाज से मुझे और आपको हकीकत का उतना इलम नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, आई बिलीव इट्स अराउंड द वर्ल्ड लाइक दिस। बहरहाल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने फलस्तीन के हक में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज के दौरान एक और गिरफ्तारी भी हुई है। अच्छा, ये इन्होंने खुद वॉलंटियर गिरफ्तारी की है और उन्होंने अपने ट्विटर पर जो पोस्ट किया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम द आर्बिट्री अरेस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स डिफेंडेंट ताहिर अब्दुल्ला एंड समीना उमर इन इस्लामाबाद हु वर टेकन इन कस्टडी आउटसाइड द नेशनल प्रेस क्लब अहेड ऑफ द नेशनल क्लब के सामने। आप क्या नेशनल क्लब ने क्या कर लेना, आपका कुछ भी नहीं करना, आपके सारे के सारे सहाफी जाहिर है जिसकी जो कीमत लगती है वो उसके लिहाज से काम करता है, पीरियड, दैट्स इट। दो तीन और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिनको मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहती हूं, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से जो मैं जाहिर मेरा कंट्री माय फर्स्ट कंट्री पाकिस्तान रहा उसके हवाले से 9 मई जब वाकयात जो हुए थे आज से तकरीबन 2 साल पहले, तो उसमें बेशुमार लोगों को अरेस्ट किया गया था। उन्हें अरेस्ट करने के बाद अभी तक कोई वाज़े सबूत तो गवर्नमेंट दे नहीं सकी। मगर उन लोगों को जेलों के बीच में रखा हुआ है, उसमें उनके सिविलियन ट्रायल्स पे एतराज हुआ, फिर हुआ कि सिविलियन ट्रायल्स के बजाय फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए था। अब भी दो हमारे जस्टिसेज हैं, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर, उन्होंने अपना इख्तलाफी फैसला, ये सात जजेस थे बुनियादी तौर पर, पांच ने गवर्नमेंट के हक में फैसला किया, दो ने इख्तलाफी फैसला किया है। कहते हैं 1962 में जो एक उस वक्त के लीडर थे, उन्होंने, ज़ाहिर उनका ताल्लुक आर्मी के साथ भी था, उसको उसके लिहाज से जो कानून बनाया था उसमें यह था कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी की कोर्ट्स में हो सकता है। बहरहाल ये कहते हैं 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 5-2 की अक्सियत से फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के, अब ये जो एग्जेक्टिव अदालतें होती हैं, फौजी अदालतें हैं, उसमें फौजियों के ट्रायल्स तो हो सकते हैं मगर सिविलियंस के नहीं हो सकते, जिसमें आपको पता ही है कि अदालतों के बीच में जो रद्दबदल हुआ वो भी आपके सामने ही है। जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 36 सफ़े पे, ये दोनों जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया, इन्होंने 36 पेजेस पर मुश्तमिल ये इख्तलाफी नोट की डिटेल्स जो हैं वो भी इन्होंने प्रिंट कर दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा क्या वजह है कि वो 5 लोगों से इख्तलाफ रखते हैं। इस फैसले में ये कहा गया है कि अदालत के सामने इस मामले से मुतल्लिक 2 सवाल थे, क्या आर्मी एक्ट का सेक्शन 2(1)(d) आइन के आर्टिकल 8 से मुताबिकत रखता है। पहला सवाल यह था कि सेक्शन 2 जो है वो आइन के आर्टिकल 8 से मुताबिकत रखता है कि नहीं। दूसरा सवाल जो था कि आइन पाकिस्तान के तनाजर में आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 के तहत सिविलियंस का क्या मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं। अब जजेस ने जो इख्तलाफी फैसले में लिखा उसमें कहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट एक खसूसी कानून है और जो सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर लागू होता है, इसका मतलब है आर्मी ऑफिसर्स के पास क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उनका ट्रायल आम अदालतों में नहीं हो सकता, वेयर एज आम आदमी का ट्रायल जो है पाकिस्तान के आईन के मुताबिक फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। तो बहरहाल उसकी वजह है कि क्या वजह है कि आर्मी वालों का ट्रायल आम अदालतों में नहीं हो सकता, दे माइट बी सम क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इन दैट, तो उनका जो मुहासबा होगा वो फौजी अदालतों में ही होगा। बहरहाल पाकिस्तान में दीगर अमूमी जराइम के लिए अमूमी कानून मौजूद है, लोअर अदालतें हैं, हायर अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, और अगर किसी फौजी से आम जुर्म सरजद हो जाए तो आम अदालतें और फौजी अदालतें दोनों का दायरा अख्तियार बनता है। मिसाल के तौर पर एक फौजी है जो हालांकि अगर आर्मी से मुतल्लिक होगा, अगेन क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, अगर वो है तो फिर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, मगर अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कोई और जमीन का झगड़ा है तो फिर उसका आम अदालत में भी, आर्मी ऑफिसर का भी हो सकता है। बहरहाल इसमें कहते हैं कतन कोई शक नहीं है कि जो आर्मी एक्ट है वो आम लोगों के ऊपर लागू नहीं होता। इस फैसले में क्योंकि उसके 36 पेजेस पर मुश्तमिल पूरी की पूरी डिटेल्स जो हैं उनको पब्लिश कर दिया गया, यानी मुसल्ला फौज के मेंबरान अपनी ड्यूटी से गफलत बरतने, ड्यूटी से मुतल्लिक किसी को उकसाने, तो अगेन मैंने उसको सिंपल वर्ड्स में क्या कहा कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो है मुल्क को नुकसान पहुंचाना, कोई इन्फॉर्मेशन का लीक होना, दैट इज ओनली टेकन केयर बाय दी फौजी अदालतों, सिर्फ फौजी के हवाले से। जजिस का फैसले में कहना है जिस तरह आर्मी एक्ट में सेक्शन 59 सब सेक्शन 4 का इजाफा किया गया। अच्छा, 59 में सेक्शन 4 का इजाफा ये 1962 में मेरा ख्याल किया गया था, हमारे अयूब खान साहब का दौर था, और यानी सेक्शन D1 में मौजूद जराइम जो हैं पाकिस्तान के सेक्शन 131 में पहले से मौजूद थे। सब सेक्शन 4 में इजाफा जो था उसमें, That was 1962, यानी 59 का सब सेक्शन 4 में इजाफा जो किया गया था, that was in 1962 में, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर जो था वो पाकिस्तान में तैनात थे, that is अयूब खान साहब। तो उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप में अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग रखने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था, यानी एग्जेक्टिव से मुराद आर्मी ऑफिसर्स एंड सिविलियंस, इन तमाम का ट्रायल मिलिट्री अदालतों में हो सकता था, दैट वॉज 1962। मगर 1973 में फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी और यानी वो रिवर्ट हो गई हुई थी चीजें। अब वो कहते हैं इन जजेज ने जो फैसला किया आइन के तहत हुकूमत रियासत की मालिक नहीं है। अब यहां पर हुकूमत रियासत की मालिक नहीं, जिसमें रियासत में एग्जेक्टिव भी आ जाते हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। इख्तलाफी फैसले में यह भी कहा गया है कि एग्जेक्टिव और अदलिया दो अलग अलग चीजें हैं। एग्जेक्टिव का जब जिक्र आता है तो इसमें आर्मी आर्म्ड फोर्सेस का और उन लोगों का जिक्र आएगा। कुरान और नबी, मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान में कुरान और नबी हर चीज में ले आते हैं, ऑफकोर्स इससे इस्लामिक स्टेट, मगर आपने फिर सूद क्यों नहीं बंद किया? आप सूद को बंद करें ना सबसे पहले। तो कुरान में सबसे ज्यादा सूद का जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा सुअर खाने के मुतरादिफ है, वो तो फिर आपने बंद नहीं किया, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता, हमारे रिलीजियस लीडर्स भी नहीं करते। अब बल्कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जो जमात है वो उसका तذکرہ जरूर कर रही है। बहरहाल वो कहते हैं कि अब जो ये जो जजेस मंदुखेल और दोनों जजेस ने इख्तलाफी फैसला किया, उन्होंने कहा है कि अदलिया का इख्तियार जो है वो एग्जेक्टिव को यानी आर्मी को नहीं दिया जा सकता। आर्मी ऑफिसर्स और जो उनकी ग्रूमिंग होती है या जो उनका करेक्टरिस्टिक है इज टू डू अदर थिंग्स, अदलिया से मुतलिक उनके पास वो पेशेंस और वो चीज नहीं है, इसलिए वो उसका फैसला नहीं कर सकते। इन्होंने इख्तलाफी फैसले में लिखा है कि ये दुरुस्त है कि आम फौजदारी अदालतों में, फौजदारी अदालतें तब हुई थी जब अदालतों के केसेस बहुत ज्यादा हो गए और आम अदालतों में निपटाया जाना तमाम केसेस को मुश्किल हो गया, तो फौजदारी अदालतें जाहिर आपने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आम अदालतों ने उनको पैदा कर लिया था, तो कोई भी किसी वक्त भी पैदा कर सकता है। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि इन अदालतों में इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं। इख्तलाफी फैसले के मुताबिक अदालती मुशाहिदे में आया है कि ज्यादातर बरीयत के फैसले बेबुनियाद सियासी मुकदमात आते हैं और जाहिर है वो कहते हैं कि गैर पेशावराना तफ्तीश और कमजोर प्रोसिक्यूशन का नतीजा हुआ करते हैं। जाहिर है आर्मी ऑफिसर्स जो हैं उनकी जो ग्रूमिंग हुई होती है या उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो डिफरेंट फील्ड में होती है, अदलिया अदालत या ये कानून से मुतलिक या कानून की शिकों से मुतलिक उनकी नॉलेज निस्बतन कम होती है। अब यहां पे उन्होंने एक और सवाल भी किया है कि अगर जो फौजी अदालतें भी काम करेंगी और फिर ये लगेगा कि जो हमारे एग्जेक्टिव इदारे हैं उन पे लोगों का एतमाद निस्बतन कम हो जाएगा, ये मैंने नहीं कहा, ये अदालत के इख्तलाफी नोट में कहा जाए। इख्तलाफी फैसले में जजेस ने लिखा कि फौजी अफसरान जो फौजी अदालतों की सदारत करते हैं वो फौजी मामलात में महारत रखते हैं, कोई शक नहीं, इन अफसरान के पास अदालती तजुर्बा नहीं होता और ना ही वो दीवानी मुकदमात निमटने की उनमें तरबियत भी होती है, और कहते हैं कि फौजी अदालतों को आम अदालतों के निजाम के बराबर नहीं समझा जा सकता। अदालतों में जो ऑफिसर्स होते हैं अदालती तजुर्बे के साथ आजादी के हामिल भी होते हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के मुकदमात को समझने की बजाय अपने मकसद के लिए फौजी अदालतों पर इन्हसार कर रहे हैं। अब बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड सिस्टम और जिसमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं उनका रोल है, तो अब हम कुछ कह भी नहीं सकते। बहरहाल उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में जाली हरूफ में लिखा कि फौजी अदालतों के पास सिविलियंस का ट्रायल करने का दायरा अख्तियार कतअन नहीं है। 9 मई मुकदमात पे सिविलियंस को सुनाई जानी, ये वही जिसमें लाहौर में आगे वाले भी लगाई गई थी मगर उसकी कोई वाज़े सूरत हाल तो भी किसी के सामने भी नहीं आई। इख्तलाफी फैसले के मुताबिक 21वीं आईनवी तरमीम के जरिए खतरनाक दहशतगर्दों को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाने दहशतगर्दी खत्म हुई। फैसले में लिखा गया है कि फौज का काम मुल्क का दिफा है न कि अदलिया के फराइज सर अंजाम देना, अगर फौज अदलिया के फराइज अंजाम देने लगी तो लोगों का एतमाद इस पर से कम हो जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले में ये दुरुस्त करार दिया गया कि फौजी अदालतों की बुनियाद को जो फौजी अदालतों में बुनियादी हकूक मुयसर नहीं होते, मिसाल के तौर पर जिस पे इल्जाम हैं उसको वकील करने की सहूलत नहीं दी जाती, उसको उसका मामला सुनाई देने की नहीं हो सकती। मैं बल्कि रिसेंटली सुन रही थी, कहते हैं कि अमेरिका में क्योंकि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप, आई एम सो सॉरी मैं यहां से जंप कर रही हूं, इट्स अगेन फैक्ट, डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि मुख्तलिफ ममालिक में सजाए मौत है और सजाए मौत की वजह से ये जो बात वो इस उन्होंने ये बात शुरू के दिनों की बात इसलिए की थी कि यहां पे चोरियां और जो मर्डर्स होते हैं इसलिए होते हैं कि लोगों को एहसास है कि कानून में इतनी सख्ती नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मौत की सजा के बारे में जिक्र किया था कि यकीनन वो एक्सट्रीम सजाओं को बहाल किया जाना चाहिए ताकि लोग खौफ से और डर से वो जुर्म ना करें। यहां पे उन्होंने लिखा है कि जो हमारी इस फैसले में, हाँ मैं जो बात करी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये लफ्ज कहा था कि अदालत जो लोग जुर्म करते हैं चाहे वो चोरियों का जुर्म हो चाहे किसी के कत्ल का हो या किसी के जुर्म, तो इस मुल्क में भी सजाएं सख्त होनी चाहिए, सजाए मौत होना चाहिए। तो वहां पे बात हो रही थी कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख के देखें, रिकॉर्ड्स को उठा के देखें, तो अमेरिका के रिकॉर्ड्स में बहुत सारे फैसले हो जाते हैं, मुजरिम अपनी सजा भुगतता है और 20 साल 25 साल डाउन द रोड पता चलता है कि उस बंदे ने तो वाकई वो जुर्म ही नहीं किया। अभी रिसेंटली एक वो जो पाकिस्तान मुसलमान है जिसका ये केस ही स्टेड आई बिलीव सो 17 गुड ईयर्स इन द जेल, और फिर किसी एक वो स्टूडेंट्स का एक पॉडकास्ट था जहां पे आके पता चला और वहां से पता चला कि वो तो भी नहीं है, उस लड़के ने खैर 17 इयर्स ही लिव्ड बिहाइंड एंड देयर आर सो मेनी अदर डिसीजन। तो इसका मतलब है कि अभी तो वो जेल के बीच में था, अगर उसको सजाए मौत दे दी जाती तो बाद में पता चलता कि ये तो फैसला ही गलत था, तो फिर किसके कंधों के ऊपर वो खून जाता। बहरहाल दिस इज व्हाट इट इज। बहरहाल वो कहते हैं सिविलियन मुलजमान को आजादाना फॉर्म के सामने अपील का हक न देना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अगर सिविलियंस को कोर्ट में इन्हीं वजह से जस्टिस अख्तर और जस्टिस मंदुखेल साहब ने जो फैसला इख्तलाफी नोट लिखा इसी बुनियाद के ऊपर लिखा कि अगर सिविलियंस का ट्रायल पाकिस्तान में फौजी अदालतों के सामने होगा और अगर उनको जस्टिस फ्राहम नहीं किया जाता, उनको उनको आजादाना अपील करने का हक नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब है कि दिस इज रॉन्ग। और दो जजेस ने लिखा है कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल अकवामे मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स कमीशन और दीगर करारदादों की भी खिलाफ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आर्टिकल 245 में फौज की बुनियादी किरदार से भी बाहर कंसिडर किया जाता है। अब पसे मंजर आपको याद ही होगा कि पसे मंजर क्या है, आपको याद होगा कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था, हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए आर्मी एक्ट की असल शक्ल में बहाल कर दिया गया था। अब आपके पॉलिटिकल लीडर्स ही वैसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के लिए पिछले साल 6 दिसंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया था। बाद में मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने 13 दिसंबर 2024 को 9 मई के वाकया वो जो 2023 की बात है, तो बहरहाल फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। 9 मई 2023 को अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में गिरफ्तारी के बाद आपको याद होगा कि पीटीआई की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 9 मई को मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने के अलावा फौजी सिविल और निजी तनसीबात को नजर आतिश भी किया गया था और बहुत सारे निजी इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया गया था। इस दौरान कम अज कम 8 अफराद की डेथ हुई थी और 290 लोग जख्मी हुए थे। ये उसी हवाले से सारा का सारा मामला चला। आपको पता है लाहौर कोर कमांडर जो है उनकी रिहायशगाह पर भी धावा बोला गया था, जिना हाउस जिसे कहा जाता है, और जो GHQ है वहां का एक गेट भी तोड़ा गया था। बस ये उसी के दहशतगर्दी इन लोगों ने की हिस्सा, तो आप ही के हैं, आप ही के मुल्क के लोग हैं, आप ही लोगों का हिस्सा है, तो आई थिंक सो कि थोड़ा सा अकल के नाखून लिए जाना चाहिए। एक और एडवांसमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा है कि बहुत सारी चीजें मुझे और आपको सामने कुछ और नजर आती हैं, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है हमें नहीं पता। आपको याद होगा कि रिसेंटली जो शाम का एक वाकया हुआ था, उस शाम के वाकये में बशारुल असद जो थे उन्होंने ऑल ऑफ सडन ये सारा कुछ होता है, बशारुल असद जो है वो वहां से उनको फरार कराया जाता है, रशिया चले जाते हैं, नए सदर जो है वो ले लेते हैं, मुसलमानों ने बड़े इसके शादी आने बचाए इसके ऊपर, फिर उसके बाद जो हुदीस थे उन्होंने फिर भी अमेरिका पर अटैक जारी रखा, फिर अमेरिका ने उनके साथ हूतीज के साथ डील कर ली, और जिस पे इसराइल खफा नजर आया, वो क्यों खफा नजर आया, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हूतीज के साथ डील कर ली है कि और फैसला ये हुआ है कि आप हमारे शिप्स के ऊपर अटैक ना करें, आप इसराइल के शिप्स के ऊपर बिल्कुल अटैक कर लें। मीनवाइल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो सऊदी अरेबिया का दौरा भी किया और अरब कंट्रीज का किया। अमेरिका इसराइल ने बहुत चाह कि डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रिप में इसराइल में भी आके आए, मगर ही डिड नॉट कम, जिसपे उनकी खफगी थी कि उन्होंने एक तो हमारी मशवरे के बगैर इस शाम के साथ सुलह कर ली है, हूतीज के साथ सुलह कर ली है, हमारे मशवरे के बगैर वो ईरान के साथ भी तल्लुकात या अपनी मीटिंग्स या अपनी जो भी बातचीत है उसके दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं। मगर अमेरिका एक तरफ कहता था कि हमने जंगबंदी करवा दी, मगर दूसरी तरफ इसराइल एवरीडे, आज भी एक अटैक हुआ है रात के बहर में और डेथ्स भी हुई हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे और आपको उसके बारे में कतअन कोई इल्म नहीं है। शाम में क्या सूरत हाल पैदा हुई थी, मैं तो बल्कि शुरू से ही आपको कहती चली आ रही हूं, और मैं आई माइट बी रॉन्ग कि 7 अक्टूबर का जो हमास का अटैक था, न मालूम हमास की जड़ें भी कहां से कहां जाके लगती हैं, उस एक अटैक में जिसमें आपने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, 1200 के करीब लोगों को जद्दोकोप भी किया, मारे भी गए लोग, कुछ लोगों को आप लेके भाग गए, उसके नतीजे में गिवन नंबर गिवन टेक में मुझे आपको 57-60 हजार नजर आता है, बट एक्चुअल डेथ्स तो मच मोर देन दैट, मच मोर देन, बहुत सारी इज्तमाही खबरें अभी नजर आएंगी आपको और मुझे जिनका बाद में पता चलेगा, द एक्चुअल नंबर इज मच मोर। तो ये जो हमास के लीडर्स थे उनका भी कोई ताल्लुक था, जाहिरी तौर पे 2-4 बंदों को मार देना एक जियो पोलिटिकल मैप को चेंज करने के लिए, दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर द पॉलिटिशियंस, नो नॉट एट ऑल। अभी भी जो सूरत हाल है, शाम की सूरत हाल को थोड़ा सा मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, बट वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। आपको बताइए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उसके अलावा चाइना अपने तौर पे उस साइड के ऊपर, जैसे नेटो है, नेटो के बराबर उस साइड के ऊपर एक इतिहाद भी तंजीम दिया जा रहा है, देर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन वो भी तामीर की जाती है, जिसमें पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, हमारे जनाब इसहाक डार साहब ने उसके बारे में एक्स पे अपनी स्टेटमेंट भी दी है, स्टेटमेंट बाय द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर मोहम्मद इसहाक। अब देखिए ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर मोहम्मद सेनेटर भी हैं माशाल्लाह, और ओकेजन ऑफ साइनिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन इन हांगकांग पे इन्होंने की है। ये चीन ने हांगकांग में एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन, जो सालसी का किरदार अदा करेंगे, यानी अगर जहां किसी के से अक्वामे मुत्तहिदा जैसे है, इसी तरह से वो एशिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस की तरह से तैयार की जा रही है, और पाकिस्तान उसका वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन है, इसकी दस्तखत की तरकीब से जनाब इसहाक डार साहब जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो हमारे सेनेटर भी हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि यू नो साइनिंग दिस एट दिस मोमेंट एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, और इससे पहले भी मुझे इस तरह का ऑनर मिल चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तिजारती तनाजात अदालती फालियत के फरोग के लिए एक सालसी मरकज कायम किया है। अपने मुल्क का तो अदालती निजाम हमारे से भी कंट्रोल नहीं, और आज भी दो जजेस का जो फैसला आया है उसके बारे में हम आपसे क्या कहें। बहरहाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम समझते हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की सख्ती से कारबंद, सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक्वामी कवानीन पर अमल दरामद के जरिए अमन सलामती और आलमी खुशहाली को फरोग दिया जा सकता है। अब जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ के मुतबादल उस साइड के ऊपर चाइना इज द प्लेइंग मेन रोल, ताकि वो ममालिक जो है आईएमएफ की बजाय उन पे इन्हिसार करें। इसी तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिहाज से भी उसका मुतबादिल भी वहां पे, इसी तरह से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन यूनाइटेड नेशन किस्म का रोल उस साइड के ऊपर प्ले करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी मशरकी हमसाए यानी इंडिया ने कवानीन के खिलाफ वर्जी की है, यकीनन जो कि इलाकाई अमन और सलामती, नोबडी कैन स्टॉप दिस बिकॉज जिस एज में हम एंटर होते चले जा रहे हैं, अनलेस अनटिल कि हम सबक ना हासिल कर लें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह एक न्यूक्लियर अटैक होने ना हो जाए, तो उससे पहले तक मेरा ख्याल है अब दुनिया दोबारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं आएगी। मैं हमेशा सोचा करती होती हूँ कि दुनिया में चीजें बिल्कुल कायनात के कवानीन के मुताबिक चलती हैं, बिल्कुल कायनात के कवानीन के मुताबिक चलती हैं। मैं इसको आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, जैसे सूरज के गए, जब सितारे घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, अपने ऑर्बिट्स में एंटी क्लॉकवाइज। मादे का सबसे छोटा जरा एक एटम है, ठीक है। एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंड इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अगेन मैं शायद ये मुबालगा कर रही हूं, बट जब हज का हमें कहा गया तो मुसलमान जब तवाफ करते हैं, दैट इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। आई रेड इट समवेयर, इट माइट बी राइट और इट माइट बी रॉन्ग, आई डोंट से। हज इज ऑल्सो, जो हम तवाफ करते हैं काबा शरीफ का, दैट इज ऑल्सो एज पर द लॉ ऑफ नेचर। अगेन, दो बड़ी चीजों का, पूरी दुनिया में कायनात एटम से बनी है, एटम्स बुनियादी जर्रा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्व है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस यूनिवर्स इज द होल यूनिवर्स। इन द होल यूनिवर्स सूरज के गिर्द जितने सैयारे गर्दिश करते हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो हज आज से तो नहीं हुआ, हज तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, नॉन मुस्लिम भी थे तो वो काबा में जाके बैठा करते थे, बुत भी थे। हजरत इब्राहिम का दौर अगर आपको याद हो, अगेन आप, मेरा फोन ओपन है, अगर इफ यू फील दैट आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, इट इज जस्ट व्हाट आई थिंक। तो तब से ही ये जो था एंटी क्लॉकवाइज ही, हज का निजाम भी एंटी क्लॉकवाइज रखा गया था। और इसी टॉपिक को मैं लेके आगे चलती हूँ। जाहिर है आज की दुनिया से मैं नेचर को मिलाना चाह रही थी। एक दो स्पॉन्सर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक अंजुम कुरैशी हमारे साथ 3:30 पे, आई एम ऑलरेडी अराउंड 7 मिनट्स अहेड ऑफ यू नो बिहाइंड द टाइम।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
पाई सस्ता लाला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओ हो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए आ जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया आले भांडे, प्लेटा, बाटिया सब कुछ मिलदा है। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दी ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक, ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 4166710577।
ये सब एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे को हमारे साथ हुआ करती है, मोहतरमा अंजुम कुरैशी साहिबा। इन दिनों मैं वही बात कर रही थी कि दुनिया जिस हिसाब से बदलती चली जा रही है, उसको मैं अभी फौरन डिस्कस भी करूंगी, जिसमें मैंने यूनिवर्स का भी जिक्र किया, जिसमें मैंने एटम का भी जिक्र किया। मैं एक्सीडेंट्स आप देखें, जितने एक्सीडेंट्स आप देखते हैं, एक गाड़ी की टक्कर हुई, दो की, अभी रिसेंटली 2-3 एक्सीडेंट ऐसे गुजरे हैं कि एक एक्सीडेंट के बीच में 3-4 लोगों की डेथ हो गई। इना लिल्लाह व इना इलैहि राजिऊन। बट ऑफकोर्स जाने वाले चले जाते हैं, जिंदगी के अखराजात वहीं खड़े रहते हैं। माँ बाप की डेथ हो गई, बच्चों की तालीम भी चलनी है, आपका घर भी। तो दिस इज नॉट कि दिस मनी इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट माई लव्ड वंस, बट लाइफ विल गो ऑन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कभी हादसा हो, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री इज वी हैव इंश्योरेंस, एंड इंश्योरेंस कवर ऑल दीज थिंग्स। अंजुम कुरैशी मेरे साथ हैं, शी वर्क्स इन द लॉ फर्म, अंजुम हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑन गोइंग सपोर्ट। आप बताइएगा व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू कॉल यू रादर देन कॉलिंग डायरेक्टली टू द इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट।
अच्छा, ये इसका जवाब मैं आपको देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने कहा ना कि हम इंश्योरेंस करते हैं यहाँ पर अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, और सबको पता है कि बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी नहीं चला सकते। और जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपके पास $1 million की लाइबिलिटी होती है। अल्लाह ना करे अगर आपने किसी को हिट कर दिया, उसकी डेथ भी हो जाती है, तब भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी चाहे उसको $500,000 देना हो, चाहे जितना भी देना हो, आपकी अपनी ओन इंश्योरेंस कंपनी उसका ख्याल रखती है। मगर जब हम कहते हैं ना कि हम बात में कहते हैं हमारा ये हक बनता है, तो हमारे कुछ फराइज भी बनते हैं, हमारी कुछ ड्यूटी भी होती है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे लोग सॉरी टू से इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि फिर इंश्योरेंस लेने के बावजूद जब कार एक्सीडेंट होता है तो वो एक सिचुएशन में अटक जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब वो उबर चलाते हैं और उबर को आप पैसेंजर बिठाते हो और आप गाड़ी चलाते हो, तो जब आप पैसेंजर बिठा के गाड़ी चला रहे हो और उबर आप चलाते हो और आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया हुआ, कल को कोई कार एक्सीडेंट होता है, आप उबर के साथ जब डायरेक्ट जाते हो तो उबर का सबसे पहला सवाल ये होता है कि अपनी आपकी ओन इंश्योरेंस भी है ना? आप कहते हो हाँ है, जाहिर है। वो मांगते हैं और आपकी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन क्योंकि उबर का ऐप ऑन था तो हम उसकी टेक केयर करें। दूसरी बात यह कि कार एक्सीडेंट में जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो ये परेशानी होती है कि मेरा घर कहाँ से चलेगा, मैं खाऊंगी कहाँ से, मैं अपने बिल कहाँ से पे करूंगा। तो जब आपको पूछा जाता है कि आप करते क्या हो, मैं उबर चलाता था, $4,000 कमाता था, लेकिन मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया हुआ। तो जब आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया हुआ और हम आपकी इनकम रिप्लेसमेंट अप्लाई करेंगे तो वो पूछेंगे आप क्या काम करते थे, वो आप सारी की सारी जो ना हमें अपनी बैंक की स्टेटमेंट दो कि आपकी जॉब क्या थी। अब आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताया हुआ नहीं कि आप उबर चलाते हो। अब जहां आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी उबर की सारी स्टेटमेंट भेजोगे, आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठा के आपकी इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल कर देगी, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें एक सवाल होता है कि डू यू यूज योर कार एज ए कमर्शियल पर्पज। तो उबर जो है वो कमर्शियल पर्पज है, आप उस वक्त नो कर देते हो, आप छुपाते हो नहीं। आपकी $50 ज्यादा इंश्योरेंस होगी, $60 इंश्योरेंस ज्यादा होगी, लेकिन आप सेफ हो। कल को अगर आपको फर्ज करो कि कार एक्सीडेंट हुआ है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट मिलती है, फिर उसके बाद उबर की अपनी और इंश्योरेंस होती है जो हर चीजों की टेक केयर कर रही होती है। लेकिन अगर आपका पर्सनल अगर कार एक्सीडेंट हो गया है और पर्सनल कार एक्सीडेंट हुआ है टोटल पर्सनल, उसमें उबर का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आप हड्डी टूट गई आपकी, आप काम पे जाने के काबिल नहीं हो, आप क्या काम करते थे, अब आप उनको बता नहीं सकते हो कि आप क्या काम करते थे, क्योंकि आपने उबर उनसे छुपाई हुई है, तो आप उनको उबर की इंश्योरेंस नहीं जाहिर कर सकते। हरवा में इस फोन पे अगर मैं इस टॉपिक पे बोलना शुरू करूँ ना तो मैं 10 घंटे बोल सकती हूँ कि जो चीजें मेरे सामने आती है, लोग बिना वजह का झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातें झूठ बोलते हैं कि इंश्योरेंस कम हो जाएगी। और जब आप कोई किसी ब्रोकर के तहत लेते हो, आप उसको कहते हो पैसे कम करा दो, तो वो मेन चीजें आपकी काट देता है। जैसे आपका रेंटल आपको मिलती है, आप जब आपका कार एक्सीडेंट होता है, जब आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हो, वो कहते हैं आपने रेंटल नहीं ली हुई थी। रेंटल नहीं ली हुई था का मकसद ये हुआ कि सीधा $1,500 से $1,600 की चपत आपको लग गई और जो गाड़ी आपकी टो होकर वहां पर गई जो कंपाउंड में, उसका जो बिल आएगा उसके आप जिम्मेदार हो, जो टो ट्रक जो है वो उठा के जो लेके गाड़ी का उसके आप जिम्मेदार हो, और आपके पास रेंटल कार भी नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ $2,500-$5,600 के लिए, ये सिर्फ $5,600 की बात है महीने की, और आपने उसके खातिर आपने अपने मेजर चीज कटवा दी थी। अब जब कार एक्सीडेंट हुआ और जो ना टो ट्रक उस वक्त आपको जो वहां से गाड़ी लेके चला गया, वो आपकी गाड़ी 4,000 की थी, लेकिन $1,700 बिल बनाए, उसके अलावा वो नहीं दे रहा। तो छोटे छोटे झूठ आपकी अपनी इंश्योरेंस को खराब करते हैं। हम कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है हमारे लिए अम्ब्रेला का काम करती है। अगर उसी अम्ब्रेला में इतने बड़े बड़े सुराख होंगे तो क्या खाक वो अम्ब्रेला आपके लिए काम करेगी? तो अपनी इंश्योरेंस जब आप लेते हो तो आप ये समझ लो कि कनाडा में रहते हुए हमारी इंश्योरेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मर भी जाता है, अगर हम किसी को हिट भी कर देते हैं, अल्लाह ना करे वो कितना बड़ा हादसा क्यों ना हो जाए, हमारी इंश्योरेंस हमको प्रोटेक्ट करती है, चाहे मैं एट फॉल्ट है चाहे नॉट एट फॉल्ट है। लेकिन अगर आपने झूठ बोला होता है तो इंश्योरेंस कंपनी राइट अवे कहती है कि आपने ये बात हमसे छुपाई थी, ये नहीं बताई थी, डिक्लाइन, हर चीज डिक्लाइन, और फिर आप खुद उस चीज के जिम्मेदार होते हो। तो हमें खुद सोचना है कि अगर हम कोई अच्छी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे काम में आती है, और झूठ बोलना, एड्रेस चेंज कर लेना, उबर चला रहे उबर नहीं बताना, दसियों किस्म की जो ना उल्टी सीधी बातें, झूठ बोल देना कि घर में कोई यंग बच्चा है, बताना कि इस गाड़ी को तो कोई हाथ नहीं लगाता। तो पहले जो है ना, हमारी इंश्योरेंस हमारे लिए हमारी सेफ्टी है, हमारा तहफ्फुज है। आपको पैसे ज्यादा देना पड़े, आपको मुश्किल उठाना पड़े, लेकिन खुदारा अपने इंश्योरेंस को बिल्कुल सही रखें, ताकि अगर आपका कार एक्सीडेंट होता है तो हर वो चीज जो इंश्योरेंस कंपनी को आपने ये सोच के लिया था कि मेरी प्रोटेक्शन करेगी, आपके पास वो मौजूद हो। मेरा काम आप तक अवेयरनेस पहुंचाना, आपका काम इन चीजों को याद रखना। कोई भी कार एक्सीडेंट होता है, हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद है जो न सिर्फ आपके क्लेम को प्रोसेस करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, 416-570-0157 मेरा नंबर है। किसी भी कार एक्सीडेंट की सूरत में आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी का नंबर 416-570-0157 और मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। अगेन, आप सब समझदार हैं, बड़े हैं, अकलमंद हैं, बाशऊर हैं, जिसमें जब मैं और आप बात करते हैं कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आप अपनी बात को कभी टेलीफोन के ऊपर रिकॉर्ड करके देखें और उसके बाद आप उसको सुने तो आप उसको एनालाइज कीजिएगा। जब हम नोट्स नहीं रखते और किसी चीज, ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है कि हम चीजों को बहुत जल्दी भुला दिया करते हैं, मगर इंश्योरेंस कंपनी की जब आप कॉल करते हैं इनकेस ऑफ एन एक्सीडेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका तमाम का तमाम रिकॉर्ड फ्रॉम द डे वन संभाल के रखती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मशवरा जरूर कर लीजिएगा। बाकी यू आर एडल्ट्स, यू नो थिंग्स बेटर देन एनीबडी एल्स, आप अपनी जिंदगी के बादशाह हैं, मगर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट मेरी रिक्वेस्ट है कीप दिस नंबर हैंडी इन योर कार्स, 416-570-0157 और मोहतरमा अंजुम कुरैशी से एक बार बात करके मशवरा जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, मैं जो बात कर रही थी ना, बात हो रही थी दुनिया की, कहां से बात चली और कहां, क्योंकि आप कभी, मुझे मेरी अपनी एक टीचर याद है, हम जब एफएससी के बाद फिर हम बीएससी में चले गए, मैथमेटिक्स अच्छा लगता था और हमारी प्रिंसिपल थी, हमारी प्रिंसिपल मिसेस शाह उनका नाम था। तो अब जाहिर है जब हम बीएससी में चले गए तो हमने बीएससी में हमारे सब्जेक्ट थे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी हुआ करती होती थी, फिजिक्स अनफॉर्चुनेटली उसको खुदा हाफिज कहना पड़ा, मैथमेटिक्स को खुदा हाफिज कहना पड़ा क्योंकि हम साइंसेस लाइफ साइंस दूसरी तरफ निकल गए थे। तो हमारी प्रिंसिपल थी मिसेस शाह, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगा करता था तो मैंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया था मैथमेटिक्स। तो मुझे याद है कि हमारी प्रिंसिपल, जो लोग साहिवाल से वाकिफ हैं, बहुत कमाल की प्रिंसिपल थी, एंड शी डिड हर मतलब उन्होंने अपनी डॉक्टरेट उसमें की थी इसमें मैथमेटिक्स में ना। तो मुझे याद है कि वो हमें पढ़ाया करती थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट लिया था मैथमेटिक्स का। तो वो कहती थी देखो इस दरख्त को देखो, तुमको वो उस हमें हर चीज में से मैथमेटिक्स निकाल के, दुनिया की हर चीज को आप साइंस की नजर में देख सकते हो, अल्लामिया ने जो बुनियादी फैक्टर्स बनाए हैं एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू दैट। दुनिया में मैं बात ये करी थी कि वक्त के साथ साथ डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। देयर वाज अ टाइम यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाई गई थी, यहीं से बात शुरू हुई थी ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट या फिर यूनाइटेड नेशंस जो तस्फिया करा दिया करते थे, मिसाल के तौर पर 1947 में पाकिस्तान बना, 48 में कश्मीर के ऊपर अटैक हो जाता है, अटैक जरा सीरियस था, इंडिया उस वक्त इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के पास गया और उसका तस्फिया हुआ, जहां पे फिर पानी का मसला चला, फिर शिमला का मुआहदा हुआ, वो भी लिखत पढ़त हुई और सारे लोग तमीज के साथ अपने लिखे हुए लिखत पढ़त के मुआहदों के साथ चला करते थे। मगर वक्त के साथ साथ अब मैं अपने घर की बात कर लेती हूँ, पाकिस्तान की बात कर लेती हूँ, देयर वाज अ टाइम कि अगर आप और मैं कभी आके, मेरी एज के जितने लोग हैं आप मेरे साथ हैं, आप अपने टीचर के बारे में उल्टी बात करते थे तो घर वाले कहते थे टीचर का रुतबा माँ बाप के बराबर है, फिर माँ बाप की एक रिस्पेक्ट हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ हर चीज में पामाली डिसऑर्गेनाइज स्टफ जो है वो बढ़ता चला गया, फिर सबसे पहले हमने पेरेंट्स की इज्जत को पामाल किया, एक जमाना था कि माँ बाप भी गलत किया करते थे तो उनको चेक करने के लिए जरूर। मेरी हर मिसाल के बीच में नेचर आपको मिलेगी, दिस इज नॉट कि आई एम टॉकिंग नॉनसेंस एट द मोमेंट, मगर फिर क्या हुआ कि माँ बाप भरी पूरी महफिल के बीच में, आपको पता नहीं है ठीक, وقت کے ساتھ. اینڈ دس از دی ٹائم ہاؤ اٹ گوز. بہرحال ملکوں کی سطح کے اوپر یونائیٹڈ نیشنز جو تھی بڑا فعال ادارہ تھا, بہت فعال ادارہ تھا, بٹ انفارچونیٹلی اب یونائیٹڈ نیشنز وہ جو گوتریس ہیں وہ بیچارہ جو بھی بولتا رہے اس کی کسی ایک بات کا کسی کے سر پہ جوں رینگنے کا نام نہیں لیتا. اور اب چیزوں کو دوبارہ آرگنائزڈ فارم میں لانا ممکن نہیں ہے, ناٹ پاسبل. بات اگین چائنا نے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف میڈیشن جو بنائی ہے, دیٹ از دا رول ماڈل کون ہے؟ یونائیٹڈ نیشن اس کا رول ماڈل ہے. مگر دنیا جس ڈگر پہ چل گئی, اگر ایشیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا اگر یونائیٹڈ نیشن کی بات کو نہیں مانتا تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف میڈیشن کی بات کو کیوں مانے گا؟ جس نے نہیں بات ماننی اس نے یونائیٹڈ نیشن کی نہیں بھی نہیں ماننی, اور اس نے اس علاقے کی بھی نہیں, یا تو اس علاقے کے لوگوں کے پاس اتنی اتھارٹی ہو کہ وہ اس کی کوئی پنشمنٹ کر سکے. آج بلکہ میں دیکھ رہی تھی دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اس کو میں پھر ایک دفعہ پھر سے آپ کو فزکس کے لا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. فزکس کا لا میں نے بات شروع کی آپ کے ساتھ آربٹ میں یونیورس کی, کہ آل جو اسٹارز ہیں دے روٹیٹ اراؤنڈ دا سن ان اینٹی کلاک وائز میں. آپ ایٹم کی بات کر لیں, کائنات کا ذرا ایٹم. مقناطیس جو بنایا جاتا ہے, مقناطیس کیسے بنایا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی اپنے گھر میں آزمایا ہوگا کہ اگر آپ کسی لوہے کی چیز کو ایک میگنیٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ میگنیٹ کے ساتھ کیلوں کو رکھ دیتے ہیں جس میں وہ فار دا ٹائم بینگ اس کے ایٹمس کو آرگنائز کر دیتا ہے ان اے فارم کے اس کے پازیٹو اینڈ نیگیٹو پول بن جاتا ہے, نارتھ اینڈ پول ساؤتھ پول بن جاتا ہے. اٹس آرگنائزیشن آف دوز ایٹمس ان اینی میٹل آئرن کے بیچ میں. ٹھیک, وقت کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کا میپ دیکھ لیں, فلوٹ کرتے جا رہے ہیں, تین حصے پانی ہے, ایک حصہ خشکی ہے. مگر یہ جو خشکی ہے, جہاں خشکی تھی وہاں پہ پانی آ گیا, جزیرے آباد ہو گئے, دنیا کے ممالک اور بر اعظم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم کائنات کو دیکھ لیتے ہیں تو کائنات میں بھی ڈس آرگنائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو قرآن نے 1500 سال پہلے لکھا تھا, آف کورس بائبل نے بھی ضرور لکھا ہوگا ہم سے پہلے کہ وہ ریلیجن بائبل اور جودزم میں کہ قیامت آئے گی, وہ بھی بلیو کرتے ہیں. قیامت پہ کیا ہے کہ روئی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح کیوں اڑیں گے؟ کیونکہ میگنیٹک فورس ختم ہو جائے گی. دیٹس واٹ اٹ از. سو ڈس آرگنائزڈ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں دور 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 دور, وہ جو ایک کشش تھی نا کھچاؤ کی, وہ کشش جب ختم ہوتی چلی جائے گی تو پھر کوئی رشتہ کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا. تو اب آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف میڈیشن بنا لیں یا یونائیٹڈ نیشن بنا لیں, جب انسانوں نے ہی قسم کھا لی ہے کہ اب ہم نے دنیا کو تباہ کر کے رہنا, تو پھر کر لو جو بھی آپ نے کرنا ہے. یو کین ناٹ چینج دا ورلڈ. بہرحال آف کورس اگر میں اور آپ نہیں دیکھ سکیں گے, تمہارے آنے والے بچے تو ان چیزوں کو دیکھیں گے نا. چوریوں کے ذکر کرنا چاہتی ہوں اور کینیڈا کی چوریوں کا ہی ذکر کرنا چاہتی ہوں. اب دیکھیے صاحب, اس ملک میں کس قدر خوبصورت ملک جہاں پہ اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کو بھوکے سونے نہیں دیں گے. ویلفیئر سسٹم اتنا اچھا ہے کہ آپ کی ٹیبل پہ فوڈ آ جائے گی. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ جاب اگر آپ کی ختم ہو گئی تو ان امپلائمنٹ آپ کی کک ان کر جائے گی. اگر کچھ بھی نہیں چل رہا تو فوڈ بینکس اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ اپنے لیے گروسری کرتے ہیں. اب آپ اس وقت دیکھ لیں کہ کتنے آپ فورٹینوز کے اوپر چلے جائیں, آپ میٹرو کے اوپر چلے جائیں, آپ اپنی گروسری کریں, $10-$20 کے وہ بیگز ہیں جو فوڈ باسکٹس میں فوڈ بنز میں چلے جاتے ہیں. اور میں پرسنلی آئی سو ون فورٹینوز. ظاہر ہے ہماری بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, دیر از ون فورٹینوز جس پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا. اینڈ آئی واز سرپرائز ٹو سی دس, اتنا اچھا وہ سینٹر ہے. دیٹ از آئی بلیو سو سم ویئر بویئرڈ, اور ہمارے فردر ایسٹ کی طرف وہ سینٹر ہے جس میں بڑے اچھی فوڈ کی پیکج ہیں. کوئی آپ پہ پکڑ نہیں ہے. آپ کو اگر خوراک کی ضرورت ہے, یو جسٹ گو دیر, پک اپ ون, اینڈ اس کے بیچ میں نان پیریشبل فوڈ آئٹم. یعنی دا بیوٹی آف دا کنٹری از کس قدر خوبصورت ملک ہے کہ اس ملک میں کسی آدمی کو بھوکا رہنے نہیں دیا جا سکتا. مگر اس ملک میں بھی چوریاں بڑھنا شروع ہو گئی. बहुत बड़ी गाड़ियों की चोरियां, घरों के बीच में होम इन्वेजन होना शुरू हो गए, बंदूक की नोक पे लोगों से ऐसे ऐसे लोग हुए कि वो नई व प्यारे लोगों को सड़क पे रोकते हैं, दो आदमी होते हैं, एक डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरा उसकी चीज उतार लेता है, लो जी अल्लाह खैर सल। अब आप इमेजिन कीजिएगा, ये वो मुल्क है जहां पर आप रात को दरवाजा भी खुला छोड़ के सो जाया करते होते थे। जस्ट थिंक अबाउट इट, विच डायरेक्शन वी आर गोइंग। हम दरवाजा भी खुला छोड़ के सो जाया करते होते थे तो डर ही नहीं होता था कि चोर आ जाएगा। अब तो इस बात को तो मारिए काट, मारिए गोली। आपके घर में बाहर एसी लगा हुआ है ना, अब एसी का डब्बा लोहे के एक एंगल आयरन है, उसके ऊपर एसी बाहर टिका हुआ है, दौड़ के तो वो जाएगा कहीं नहीं, उसको उठा के भी कोई नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो भारी इतना। लो जी अब इस वक्त ओशवा में ये जो चोरियां हो रही हैं, चोर इज एवरीवेयर। कहते हैं कि ओशवा में पुलिस ने वार्निंग दी है लोगों को कि चोर आपके घर के बाहर जो एयर कंडीशनर का यूनिट लगा है उसको खोल के उसमें से कॉपर निकाल के, कॉपर इज एक्सपेंसिव मेटल। अब आप देखिएगा अगर ये सोने की जितनी महंगी हो गई तो फिर मैं और आप गर्मी में सोया करेंगे, फिर हम एसी भी नहीं लगा सकते। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। मैंने जब ये न्यूज को पढ़ा ना तो मैंने कहा हा हाय, मैंने तो गार्बेज में अभी तीन दिन पहले कॉपर के तीन पाइप फेंके हैं। वो नहीं, अब घरों में एक जमाने में पानी के लिए पानी की तरसील के लिए कॉपर के पाइप्स डाले जाते थे। फिर मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहां पे एक प्रॉब्लम आ गई कि जो कॉपर के पाइप्स है ना, वक्त के साथ इसमें नीडल होल हो जाता है, वो नीडल होल पर एक सा होल होता है और वो फिर लीकेज शुरू हो जाती है। तो फिर हमने सारी की सारी वायर्स चेंज करवाई, उसकी पानी की पाइप चेंज कराई थी, जिसमें कॉपर को खत्म करने के बाद वो अब नई पीवीसी के पाइप्स आ गए हैं, लाल रंग के और जीटे रंग के तो वो वाले चेंज करा लिए थे। तो वो हमारे घर में कॉपर की वायर्स पड़ी हुई, कॉपर की वो पाइप्स पड़ी हुई थी। अब मैं ये खबर पढ़ी थी कि वो कहते हैं कि पुलिस वार्न कर रही है ओशवा के लोगों को, ग्रोइंग नंबर ऑफ कॉपर थेफ्ट। अब वो करते क्या है, आपके घर के बाहर एसी का डब्बा लगा हुआ है, क्या कहते हैं एसी का जो बाहर का यूनिट लगा हुआ है, एक्सटर्नल यूनिट लगा हुआ है, एंगल आयरन के ऊपर रखा हुआ है, और उसमें कील लगा के उसको अच्छी तरह पका गया दौड़ के न चला जाए। तो चोर क्या करते हैं, आते हैं उसका पेज खोलते हैं, अंदर से जितनी कॉपर की वायरें हैं वो निकाली और निकाल के ले गए। कैन यू बिलीव, डिड यू एवर थिंक अबाउट इट कि कैनेडा विल बी लाइक दिस? आई नेवर थॉट अबाउट इट, नेवर। फॉर अ ब्यूटिफुल कंट्री जिसने मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल किया है कि कोई गरीब कोई भूखा ना सोए। वो कहते हैं धर्म रीजनल पुलिस के मुताबिक रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को टारगेट किया जा रहा है डाउनटाउन कोर में और सराउंडिंग नेबरहुड में। और 2025 से पुलिस कहती है कि उन्होंने 22 रिपोर्ट्स, 22 चोरियां ही हैं। अच्छा, आमिर को भी पता नहीं क्या हो गया है, पहले तो फटाफट वो चीज निकाल लिया करते होते थे, अब वो उनकी मुझे लगता है जंबील बहुत लंबी होगी, उम्र यार की जंबील बहुत लंबी होगी। पुलिस कह रही है कि अगर किसी ने कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखी, मेरा ख्याल है इसका ओनली हल इज कि नेबरहुड वॉच जो है ना वो आपकी कंपेरेटिवली बेहतर होनी चाहिए। बहरहाल उनकी मैं पुलिस की जो ट्वीट है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पुलिस कह रही है इंक्रीज्ड कॉपर थेफ्ट इन डाउनटाउन ओशवा, वी हैव सीन ग्रोइंग नंबर ऑफ कॉपर थेफ्ट फ्रॉम एयर कंडीशनिंग एंड हीट पंप्स यूनिट्स इन द डाउनटाउन ओशवा एरिया एंड द सराउंडिंग नेबरहुड, बोथ रेजिडेंशियल एंड द कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर बींग टारगेटेड। अनबिलीवेबल, दिस इज डेफिनेटली क्वाइट अनबिलीवेबल कि इस मुल्क में जहां का सिस्टम इतना खूबसूरत है, जहां पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास निजाम मौजूद है। आप इमेजिन कीजिएगा, मैं और आप, अगेन आई एम नॉट सेइंग, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, हर एक का दिल करता है कि अगर सड़क के ऊपर कोई मांगने वाला खड़ा है तो आप उसको पैसे दे दें, बट ये क्राइम को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी लेडर का फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर बनता है कि जो लोग सड़कों पे खड़े होकर मांग रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड ऑन द लेडर फॉर दीज क्राइम्स। ठीक है, ये तो एक खबर मैंने आपके साथ शेयर करी, बट एट द मोमेंट दे से इट इज इन ओशवा के एरिया में, बट ऑफ कोर्स इट सिर्फ ओशवा में नहीं रहेगा, इट विल गो ऑल ओवर। लीजिए साहब, इसके साथ ही मैं चंद एक स्पॉन्सर का पैगाम ले लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगी। स्टूडियो का नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 4166201778 हमारे स्टूडियो का नंबर है। प्लीज अगर आप शामिल होना चाहें, अगर आप कॉल करना चाहें तो आप इसमें कॉल करके अपनी राय, अपना राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। मैं उतनी देर में अपने चंद एक स्पॉन्सर की तरफ जाती हूँ और फिर वापस आती हूँ। प्लीज स्टे ट्यून्ड।
तुहानू पर्सनल सपोर्ट वर्कर क्यों बनना चाहिए? दूजिया दे जीवन विच बदलाव लियाउण लई सिर्फ 5 महीनिया विच अपना सर्टिफिकेट हासिल करो अते देखभाल विच अपना करियर शुरू करो। वधेरे जानण लई ontario.ca/gopsw ते जाओ। इसलिए अदायगी ओंटेरियो सरकार वालों की गई है।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
ब्रैम्पटन शहर एक इन्वेसिव स्पेशियस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है और हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपकी राय मकामी पौधों, जानवरों और उन कुदरती मकामात के तहफ़ में मदद देगा जिनसे हम सब लुत्फ़अंदोज होते हैं। 29 अगस्त तक हमारा मुख्तसर सर्वे मुकम्मल कीजिए और 10 खुशनसीब पाएंगे प्रेस्टो कार्ड जिसकी मालियत है $20, TRCA कंजर्वेशन एरिया फैमिली पास जिसकी मालियत है $35, ऑन्टेरियो पार्क पासेस जिनकी मालियत है $50। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए brampton.ca invasives।
ताज़ा सब्जियां ली तो अड्डा